नमस्कार।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य संरक्षण। और इसके लिए हम आधार बना रहे हैं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की पुस्तक स्वास्थ्य संरक्षण इस तरह संभव होगा को।
जी,
वंदनीय माता जी जो गायत्री परिवार की संस्थापिका थीं, उन्होंने इस पुस्तक में ना आम भारतीय नागरिक के लिए बड़े ही सीधे साधे व्यावहारिक स्वास्थ्य सूत्र दिए हैं।
हाँ बिल्कुल।
तो हमारा मकसद यही है कि उन मुख्य बातों को समझें जो उन्होंने बताई हैं, खासकर पारिवारिक स्वास्थ्य को लेकर और उसमें भी स्त्रियों की भूमिका पर उनका क्या कहना था।
सही बात।
तो चलिए देखते हैं कि कैसे रोजमर्रा की आदतों में, अपनी पारिवारिक परंपराओं में छोटे छोटे बदलाव करके हम बेहतर सेहत पा सकते हैं, जैसा वंदनीय माता जी ने सुझाया है।
बिल्कुल।
तो वंदनीय माता जी का एक जो मुख्य विचार है वो ये कि स्वास्थ्य सिर्फ हमारी अपनी कोशिशों पर निर्भर नहीं करता, परिवार की जो परंपराएं हैं उनका भी इसमें बड़ा हाथ है।
हाँ, वो घर को एक पाठशाला की तरह देखती थी।
पाठशाला।
अच्छा जी। जहाँ सेहतमंद आदतें सीखी जाती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और इसमें वो स्त्रियों को परिवार के स्वास्थ्य की कह सकते हैं धुरी मानती थीं, खासकर रसोई और घर की आदतों को संभालने में।
लेकिन क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ स्त्रियों की है?
नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, वो पारिवारिक परंपराओं पर जोर इसीलिए देती थीं क्योंकि आदतें तभी टिकती हैं जब वो हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएं, और वो हमेशा पुरुषों और स्त्रियों के मिले जुले प्रयासों की बात करती थीं।
अच्छा, मतलब एक टीम वर्क की तरह।
हाँ बिल्कुल। जहां स्त्रियां शायद नेतृत्व करें, पहल करें, लेकिन पुरुष उसमें पूरा सहयोग दें, ये एक साझेदारी है परिवार की सेहत के लिए।
ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आहार पर आए, खान पान पर, तो वंदनीय माता जी का नजरिया आज की कई धारणाओं से थोड़ा अलग लगता है।
हाँ, काफी अलग। वो कहती थी कि क्या खाया इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि कैसे खाया।
कैसे खाया मतलब
उनका कहना था कि जो हमारा साधारण भारतीय भोजन है, रोटी दाल सब्जी, वो सेहत के लिए काफी है। जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीजें खाई जाएं।
हाँ, उन्होंने शायद दूध घी मेवों जैसी चीजों के लिए कहा है कि आम आदमी को इनकी सलाह देना ठीक नहीं।
बिल्कुल सही। वो इसे अव्यवहारिक मानती थी। उनका मानना था कि हमें लोगों की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। उनका ज्यादा जोर था खान पान की आदतों पर।
आदतें जैसे कि?
जैसे दिन में केवल दो बार मुख्य भोजन करना और शायद दो बार छाछ या लस्सी जैसा कुछ हल्का पेय। बार बार खाते रहना, वो कहती थी, पाचन तंत्र के लिए अच्छा नहीं है।
और समय का भी कुछ बताया उन्होंने?
हाँ, भोजन के समय की पाबंदी पर बहुत जोर था, क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र है ना, वो एक तय समय पर ही पाचक रस छोड़ता है।
अच्छा।
तो समय पर भोजन करने से पाचन ठीक रहता है, और यहाँ फिर स्त्रियों की भूमिका अहम हो जाती है परिवार में एक नियमितता बनाने में।
और मात्रा, कितना खाएं?
हाँ, मात्रा पर भी नियंत्रण। पेट हमेशा थोड़ा खाली रखें, मतलब आधा या ज्यादा से ज्यादा पौना पेट ही भरें। वो मानती थीं कि आग्रह करके जबरदस्ती ज्यादा खिलाना वो स्नेह नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाना है।
ये तो आजकल बहुत होता है। और खाने के तरीके पर भी उन्होंने कुछ कहा है, जैसे चबाने वगैरह पर।
जी बिल्कुल। हर कौर को खूब अच्छी तरह चबाकर खाना, ताकि मुंह की जो लार है जिसमें पाचक रस होते हैं वो भोजन में अच्छी तरह मिल जाएं। जल्दी जल्दी निगलना ठीक नहीं।
और पानी, खाने के साथ पानी पीना चाहिए या नहीं?
उनका सुझाव था कि भोजन के एकदम साथ ज्यादा पानी ना पिएं। दिन भर में जरूरत के हिसाब से अंदाजन 6 गिलास पानी काफी है, और वो भी कोशिश करें कि भोजन से करीब 1.5 घंटे बाद पिएं।
अच्छा, ये तो हुई खाने की आदतें, लेकिन खाना पकाने का तरीका, उसके बारे में वंदनीय माता जी क्या कहती हैं?
हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो बताती हैं कि गलत तरीके से पकाने से, जैसे बहुत तेज आंच पर या जरूरत से ज्यादा तलने भुनने से, भोजन के जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
और खाना भारी भी हो जाता होगा?
हाँ, पचने में भारी हो जाता है। यहाँ तक कि जो हम आटे से चोकर निकाल देते हैं उसे भी वो सही नहीं मानती थी।
तो फिर सही तरीका क्या है?
वे सलाह देती थी कि प्रेशर कुकर में पकाएं, या फिर हल्की आंच पर बर्तन को ढककर पकाएं, या फिर भाप में पकाना भी अच्छा है।
यानी पकाने का तरीका भी उतना ही जरूरी है जितना खाने का।
निश्चित रूप से। और भोजन में सलाद, अंकुरित अनाज, इनको जरूर शामिल करना चाहिए।
और फल सब्जियां?
हाँ, मौसम के जो सस्ते फल और सब्जियां होती हैं, जैसे आम, अमरूद, बेर, या अनाज में ज्वार, बाजरा, इनको ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। वे कहती थी कि तले हुए मसालेदार अचार जैसी चीजों पर पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि उतने पैसों से ताजे फल या सब्जियां खरीद लें।
ये तो बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। अच्छा, आहार की बात तो हो गई, अब आते हैं विहार पर, यानी जीवन शैली।
जी, आहार के साथ सही विहार भी उतना ही जरूरी है।
इसमें क्या क्या आता है?
इसमें आता है शारीरिक मेहनत और आराम के बीच संतुलन, खुली हवा में रहना, धूप लेना, ये शरीर के लिए फायदेमंद है। और एक और बात, बहुत ज्यादा सर्दी गर्मी से डरना नहीं चाहिए, इससे शरीर कमजोर होता है।
और कपड़े?
कपड़े आरामदायक ढीले ढाले पहनने चाहिए।
और दिनचर्या का कितना महत्व है?
दिनचर्या तो बहुत ही जरूरी है, नियमित होना चाहिए सब कुछ। समय पर उठना, सोना, समय पर शौच जाना, स्नान करना, दांत साफ करना,
व्यायाम वगैरह।
हाँ, शारीरिक श्रम या किसी न किसी तरह का व्यायाम अनिवार्य है, चाहे वो सुबह टहलना हो, दौड़ना हो, कुछ योगासन या प्राणायाम हो, या फिर घर के कामकाज ही क्यों ना हो, शरीर को सक्रिय रखना जरूरी है।
और साफ सफाई?
उसका तो बहुत ही ज्यादा महत्व है, अपने कपड़ों की, बिस्तर की, अपने घर की, आसपास की सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए।
हमने खान पान, पकाने की विधि, जीवन शैली, इन सब पर बात की, लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए? मानसिक स्वास्थ्य का क्या?
ये आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया। वंदनीय माताजी के अनुसार हमारी जो मानसिक स्थिति है उसका स्वास्थ्य पर आहार विहार से भी कहीं ज्यादा असर पड़ता है।
अच्छा, ज्यादा असर?
जी हाँ, हंसना हंसाना, खुश रहना, मन को शांत और प्रसन्न रखना, ये बेहद जरूरी है। और यहाँ फिर से घर का माहौल सकारात्मक बनाने में स्त्रियों की भूमिका अहम हो जाती है।
हाँ, क्योंकि घर के माहौल का असर तो सब पर पड़ता है।
बिल्कुल, और जो नकारात्मक भावनाएं हैं जैसे जलन, नफरत, चिंता, गुस्सा, डर, निराशा, मंदनीय माताजी कहती थीं कि ये सब हमारे खून को जलाती हैं, हमारी सेहत को बिगाड़ती हैं।
यानी इनसे बचना बहुत जरूरी है।
इनसे घिरा हुआ व्यक्ति कभी पूरी तरह निरोग नहीं रह सकता, इसलिए मिलजुल कर रहना, आपस में प्यार और संतोष रखना, ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है।
तो अगर हम सारी बातों का सार निकालें तो वंदनीय माताजी का संदेश एकदम साफ है, स्वास्थ्य एक अकेली चीज नहीं बल्कि एक समग्र नजरिया है।
हाँ, जिसमें संतुलित और सादा आहार, सही जीवन शैली, सकारात्मक सोच और मजबूत पारिवारिक परंपराएं, ये सब शामिल हैं।
और इसमें स्त्रियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे पुरुषों के सहयोग से और प्रभावी बनाया जा सकता है।
बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं।
हाँ जरूर।
वंदनीय माताजी असंस्कृत जिह्वा को वश में करने की बात करती हैं। असंस्कृत जिह्वा यानी बेलगाम जीभ।
इसमें तो खान पान का चटोरापन आ गया।
हाँ, चटोरापन तो है ही, लेकिन साथ ही कड़वी बोली पर काबू पाना भी इसमें शामिल है।
अच्छा, वाणी पर संयम।
जी, तो सवाल ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वाद और वाणी, इन दोनों पर संयम रखना हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वास्थ्य को किस तरह से और बेहतर बना सकता है, इस पर सोचने की जरूरत है।
बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा विचार है।